तो कल हम वेणुगीत के बारहवें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम, जिसमें गोपियां ये वर्णन कर रही हैं कि वो देवताओं के पत्नियां अर्थात देवियां अपने विमानों में आसमान में बैठी हैं और श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुनकर भाव विभोर होकर पूरी तरह से भ्रमित हो चुकी हैं। और ऐसी अवस्था में वो अपना आत्मसंयम खो बैठे हैं और साथ में उनके पति भी हैं, उनके पति भी भक्त हैं और वो ईर्ष्या नहीं करते हैं श्री कृष्ण से कि उनकी पत्नियां श्री कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित हो गई हैं। अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली समझते हैं देवता देवियों की तुलना से, क्योंकि कम से कम देवियां इतनी अच्छी तरह से श्री कृष्ण की लीला का श्रवण का दर्शन कर सकती हैं, उनके वेणु गीत का श्रवण कर सकती हैं और उनके पतियां उनको रोकते नहीं हैं जैसे कि गोपियों के पतियां उनको रोकते हैं। इसलिए गोपियां उनको बहुत भाग्यशाली समझती हैं, जैसे कि वो हिरणियों को समझ रही थी। हम ये भी सुन रहे थे कि किस तरह से श्री कृष्ण का वेणु गीत सारे ब्रह्मांड में फैल जाता है, देवताओं को भी भ्रमित कर देता है, केवल देवियों को नहीं, ब्रह्मा जी शिव जी यहां तक कि अनंत शेष भी पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। साथ साथ भगवान कृष्ण अलग अलग धुनों में स्वरों में अपनी बांसुरी बजाते हैं, नवीन धुन धुनों का आविष्कार करते हैं, हर क्षण नए नए ढंग से बांसुरी बजाते हैं। इन धुनों का सुरों का ज्ञान गंधर्व लोक में भी नहीं है और इससे कई अद्भुत परिणाम होते हैं जैसे हम सुन रहे थे। और इस तरह से गोपियां सारे वृंदावन के प्राणियों को बल्कि देवी देवताओं को भी अपने आप से ज्यादा भाग्यशाली समझते हैं। सोचते हैं कि हिरणियों का शरीर निम्न श्रेणी का है, नीच जाति के हैं वो, देवी देवताओं का शरीर ऊंचे जाति का शरीर है और दोनों श्री कृष्ण के लीला में भाग ले सकते हैं, लेकिन केवल हम ही इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो ये गोपियों का शोक है। तो गोपियों के इस वेणु गीत में हम सुन चुके हैं कि हर एक श्लोक गोपियों के अलग अलग यूथ में या दल में हो रहा है, परंतु इन सारे श्लोकों में भी एक सुसंगतता है, एक अनुकूलता है, भाव एक ही है, कोई विरोधाभास नहीं है इसमें। और इसलिए आचार्यों ने इन श्लोकों को अलग अलग, इनके भी अलग अलग दल बनाए हैं। जैसे 11वां और 12वां श्लोक जो हम पिछले दो दिनों में चर्चा कर रहे थे हिरणियों के बारे में और देवियों के बारे में, उनको एक साथ रखा है श्री जीव गोस्वामी ने। और फिर 13वां श्लोक जिसकी चर्चा हम आज करेंगे और आगे चल के 16वें श्लोक तक, सनातन गोस्वामी कहते हैं ये एक भाव के हैं, क्योंकि 11वें और 12वें में देवी और हिरणियां वो एक जैसे हैं, उनकी भावनाएं हैं ऐसी ही, उनके पति भी उनको रोकते नहीं है इत्यादि, तो उनको साथ में जोड़ा हुआ है। इसके पहले जो भक्ति की तीव्रता थी वो और ज्यादा थी, क्योंकि उसमें बांसुरी का वर्णन आया, मयूरों का वर्णन आया। और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जैसे अब श्लोक बढ़ते जाएंगे वेणु गीत इस अध्याय में, तो भक्ति की तीव्रता थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। मतलब जिन विषयों के बारे में वो वर्णन करते हैं उनकी भक्ति उतनी तीव्र नहीं होगी जैसे कि इसके पिछले श्लोक में था। ये गोपियों की दृष्टि है। हालांकि सभी बड़े प्रेमावेश में है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे सनातन गोस्वामी कहते हैं। अब आगे चल के गोपियां ये वर्णन करने वाली हैं कि गायों का सौभाग्य क्या है, और उसके बाद में पक्षियां, नदियां, यहां तक कि बादल भी, वो किस तरह से कृष्ण लीला में भाग लेते हैं। और ये जो चार वर्ग हैं ये थोड़े दूर हैं कृष्ण लीला से। और इस 13वें श्लोक में गोपियां गायों का और वत्सों का वर्णन करने वाले हैं। वो इतनी अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उनके बांसुरी की आवाज को अवश्य सुन सकते हैं। तो इस तरह से अब गोपियां अपने दृष्टि से आगे बोलने वाली हैं। हमें याद रखना है कि गोपियां इस तरह से क्यों बोल रही हैं, क्योंकि उनका भाव बहुत ऊंचा है, माधुर्य भाव का अनुभव है उनका, और इसलिए वो जहां भी देखते हैं सभी को इसी भाव में देखते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी दृष्टि ऐसी होती है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बताते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सच मयि न प्रणश्यति। वो कहते हैं कि जो मुझे सब जगह देखते हैं और जो मुझमें सबको देखते हैं, न वो मेरे लिए खो जाते हैं न मैं उनके लिए खो जाता हूं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं सबसे ऊंचे स्तर में स्थित होने वाले, वो सब जगह श्री कृष्ण को देखते हैं। हालांकि वो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग रूप इत्यादि देखते हैं, लेकिन फिर भी इन सब में ही कृष्ण को देखते हैं। और इसका सबसे ऊंचा उदाहरण है गोपियों का। अलग अलग रूप देखते हैं, हिरणियों को देखते हैं, मोर को देखते हैं, देवियों को देखते हैं, बांसुरी को देखते हैं, अब गाय को देखेंगे। इन विविध प्रकार की चीजों को देखने के बाद भी उनका स्मरण केवल कृष्ण का है। इस तरह से गोपियां अपनी ही दुनिया में निवास करती हैं। शायद जो दृश्य गोपियां देख रही हैं, जिनका वर्णन वो कर रही हैं, शायद वो ऐसा न हो वास्तव में हमारी दृष्टि से। हो सकता है कि देवियों की भावना इतनी तीव्र नहीं हो जैसा कि गोपियां वर्णन कर रही हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि गोपियों का जो गोपियों की दुनिया है, उनका जो सत्य है वो अलग स्तर पे है, और वो उनके दुनिया के दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी दुनिया हमारी दुनिया अलग है, इसलिए एक दृष्टि से जो वो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो वो भी सही है उनकी दुनिया के दृष्टिकोण से। तो इसलिए इन दोनों दुनियाओं में हमें विरोधाभास नहीं दिखना चाहिए। कभी कभी अगर कोई नौसिखिया भक्त इनको पढ़ेंगे, हम सब जब इनको पढ़ेंगे, तो शायद हमारे मन में ऐसे कोई दुविधा की भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसे कोई विरोधाभास का प्रश्न नहीं आता है यहां पर। तो इसलिए गोपियां जो हैं अपनी भावना को, अपने मनोवांछित इच्छाओं को दूसरों के ऊपर वो लगा देते हैं, दूसरे प्राणियों के ऊपर, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, चर हो, अचर हो, अपनी भावना को दूसरों के ऊपर लगा देते हैं और सोचते हैं कि इनके मन में भी वही भावना है जो हमारे मन में है। इस तरह से अभी ये गोपियां अब गाय को देखेंगी। अगर गोपियां किसी पक्षी को देखती हैं और वो पक्षी समझ लो कोई कोयल है, कोयल मीठे मीठे ढंग से कोई गा रही है, कोयलों का तो स्वभाव है गाना, लेकिन गोपियां सोचेंगी कि ये कोयल जो है वो कृष्ण का गुणगान कर रही है। अगर कोई गाय कृष्ण के पास जाकर घास खाने जाएगी तो गोपियां सोचेंगी, देखो अपना सर झुका के वो कृष्ण के पास दंडवत करने जा रही हैं, प्रणाम करने जा रही हैं। शायद पक्षियों का या गायों का के मन में ये इच्छा न हो, या हो भी, लेकिन फिर भी गोपियां देखती हैं ऐसे। तब इसी दृष्टि से वो गायों के प्रति देखने वाले हैं। तो आइए गायों का वर्णन सुनते हैं गोपियों के शब्दों में। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम उत्तभित कर्ण पुत पिबंत्य शावः स्मृतस्तनपयः कवलः स्मतष्ठु गोविन्दमात्मनि दृशा शुकलः स्पृशन्त्यः गावश्च कृष्णमुखनिर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्कभित कर्ण पुटः पिबन्त्यः शावः स्मृतस्तनपयः कवलः स्मतष्ठु गोविन्दमात्मनि दृशा शुकलः स्पृशन्त्यः गावश्च कृष्णमुखनिर्गत वेणुगीत पीयूषम् उत्तभित कर्ण पुटः पिबन्त्यः शावः स्मृतस्तनपयः कवलः स्मतष्ठु गोविन्दमात्मनि दृशा शुकलः स्पृशन्त्यः श्रील प्रभुपाद द्वारा अपने उठाए हुए कान रूपी दोनों पुट से गौवें कृष्ण के मुख से निकले वेणु गीत के अमृत का पान कर रही हैं। बछड़े अपनी माताओं के गीले स्तनों से निकले दूध को मुख में भरे भरे स्थिर खड़े रहते हैं जब वे अपने अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद को अपने भीतर ले जाते हैं और अपने हृदयों में उनका आलिंगन करते हैं। तो गावह, गावह मतलब गाय। तो गाय वेणु गीत सुन रहे हैं। वेणु गीत आया कहां से है? कृष्ण मुख निर्गत। सो कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीत वो सुन रहे हैं। और ये कैसा लग रहा है उनको? पीयूषम, पीयूष मतलब अमृत। और वो कैसे, क्या कर रहे हैं इस अमृत का? अमृत का क्या करना चाहिए? अगर हमें, अगर कोई अमृत आके दे दे, हमें क्या करना चाहिए उस अमृत का? पीना चाहिए। तो देवतागण जब अमृत पीते हैं तो अपने मुख से पीते हैं, लेकिन यहां गाय अमृत पी रहे हैं, लेकिन ये वेणु गीत का अमृत है। तो कैसे पीते हैं? पिबंत्य पीते हैं, लेकिन कैसे पीते हैं? कर्ण पुटे ही, अपने कानों से पी रहे हैं। तो कृष्ण कथा का अमृत का पान अपने कर्णों से, अपने कानों से किया जाता है। लेकिन कैसे पी रहे हैं इस अमृत को? कानों से पी रहे हैं, लेकिन किस तरह से? उत्तभित, पूरी तरह से कानों को उठाकर पी रहे हैं, मतलब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वैसे साधारणतः गायों के जो कान होते हैं वो नीचे होते हैं, लेकिन इस बार जब वो वेणु गीत सुन रहे हैं तो कानों को उठा लिया है, उठाकर बड़े ध्यान से पूरी मानसिक शक्ति लगाकर वो इसको सुन रहे हैं। मानो कि इस अमृत का एक बूंद भी वो खोना नहीं चाहते। उनके कान अब पात्र बन गए हैं उस अमृत को पीने के लिए। इसलिए कानों को दोनों उठाकर उसको बड़ा कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अमृत इसमें भर जाए और एक भी बूंद इधर उधर न गिरे, अर्थात थोड़ी सी भी जो ध्वनि है इधर उधर न हो जाए, पूरी तरह से हृदय से अच्छी तरह से वो सुनना चाहते हैं भगवान कृष्ण के बांसुरी का वादन। इसी तरह से हमें भी कृष्ण कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, पिबन्ति भागवतात्मनः सुताम् कथामृतम् श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयवितुषु ताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। श्रीमद् भागवत में बताया है, पिबन्ति भगवत आत्मनः सताम् कथामृतम्। भगवती मतलब भगवान, जो कि आत्मनः सताम, सताम मतलब ऋषिगण जो भक्त हैं, भगवान जो कि भक्तों के प्राण हैं, उनकी जो कथा का अमृत है हमें पीना चाहिए, ऐसे भागवत का आदेश है हम सबके लिए। पिबन्ति ये भगवती आत्मनः सताम कथामृतम्, तो कैसे पीना चाहिए? कथामृतम श्रवण पुटेशु, जैसे यहां कर्ण पुट ही बताया है तो वहां कहता है श्रवण पुटेशु, अपने कानों से पीना चाहिए। लेकिन कैसे पीना चाहिए? संभृतम, भर भर के पीना चाहिए, ऐसा भागवत कहता है। सुनने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि थोड़ा बस सुन लिया, थोड़ा अमृत पी लिया, नहीं, भर के पियो, जी भर के पियो, जितना हो सके उतना भर लो अपने कानों में। इससे क्या होगा? पुनंति ते विषय विदूषिताशयम्, पुनंति मतलब शुद्धिकरण हो जाएगा। किससे शुद्धिकरण हो जाएगा? विषय विदूषित आशयम, आशा, किस तरह की आशा है? विदूषित गलत आशा है। कौन सी गलत आशा है? विषय, इन इंद्रिय विषयों का भोग करने की जो इच्छा हमारे हृदय में है, पुनंति ते, विषय भोग की भावना हमारे हृदय से नष्ट हो जाएगी। जैसे ही ये कथा का अमृत हमारे कर्ण पुटों से प्रवेश करेगा, हृदय में जाएगा, जहां हमारी काम वासनाएं अन्य गलत भावनाएं हैं, ये कथामृत इसको इनको नष्ट कर देगा, पुनंति, हृदय को शुद्ध करा देगा। और ऐसे शुद्ध हृदय के बाद व्रजंती तत्, फिर हम चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे? चरण सरोर उहंतिकम, फिर हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करेंगे उनके धाम में। तो गाय भी इसी तरह से पूरे अपने कानों को खड़े करके, कानों को बड़े करके इस अमृत का पान सुन रही है, और सुनकर उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव हो रहा है, स्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल प्रतिमा की तरह खड़े हो जाते हैं। या अगर किसी चित्रकार ने कोई चित्र बनाया हो तो चित्र में खड़े हुए गाय कैसे हिलते नहीं है, तो इसी तरह से ये गाय भी वहां पे खड़े हैं, बस हिल नहीं रहे हैं, इतने स्तब्ध हो गए हैं। ये है कृष्ण के बांसुरी का असर, और पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, ताकि जब आंख खोलेंगे तो फिर इधर उधर मन जा सकता है, तो आंख बंद कर रहे हैं ताकि कोई दूसरा दृश्य न आए। पूरी मानसिक शक्ति केवल इस बांसुरी के ध्वनि के ऊपर केंद्रित हो जाए। हमें भी भगवान का नाम जप करते समय ऐसे ही ध्यान से सुनना चाहिए। कभी कभी आंखें बंद करना भी अच्छा होता है, क्योंकि फिर हमारी आंखें इधर उधर नहीं जाती हैं और हम पूरी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। परंतु अगर आंखें बंद करने से नींद आ जाती है तो भले हम आंखें खोल के करें, लेकिन ध्यान से करें। तो गाय अभी पूरे ध्यान देके अपने आंखें बंद कर रही हैं, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी एक अनंत अमृत की धारा जैसे उनके कानों में से प्रवेश कर रही है और उनका मन हरण करे ले जा रही है। और इस तरह से शब्द खड़े रहते हुए उनके सुंदर दांत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो चारा उन्होंने मुंह में लिया है, जो घास उनके मुंह में है, वो आधा बाहर है आधा अंदर है। थोड़ा घास गिर भी रहा है अपने आप, क्योंकि वो चबा नहीं रहे, चबाना बंद कर दिया उन्होंने, बस खड़े हैं यूं ही, कुछ नहीं कर पा रहे, हिल नहीं रहे, मुंह भी नहीं हिल रहे हैं, चबा भी नहीं रहे, घास तो आधा मन में भरा हुआ है और थोड़ा बहुत गिर भी रहा है। तो ये गायों के ऊपर असर हो रहा है। लेकिन गाय अकेले नहीं है, उनके साथ में कौन है? उनके बछड़े हैं। इसलिए यहां कहा गया है शावाह। तो गाय के बछड़े वो क्या कर रहे हैं, या ऐसे बोला जाए तो बांसुरी की आवाज सुनने के पहले वो क्या कर रहे थे? यहां गोपियां कहती हैं स्नुत स्तनपय। स्तनपय, पय मतलब दूध। तो गाय अपने स्तनों से दूध दे रही थी, स्नुत तो बहुत सारा दूध आ रहा था। तो जो वृंदावन की गाय हैं वो बहुत ज्यादा दूध देती हैं, सुरभि गाय हैं आखिर, और इतना ज्यादा दूध देती हैं कि खुद दूध बह रहा होता है, और जो गाय के बछड़े हैं बड़े आराम से उसको पी रहे होते हैं। लेकिन जब अब वो बांसुरी की आवाज सुन रहे हैं तो गाय के बछड़े क्या कर रहे हैं? स्तनपान कर रहे हैं। अपने मुंह उन्होंने अपने मां के स्तनों में लगाया हुआ है और उनका मुंह जो है दूध से भरा हुआ है। कवलाह, कवला मतलब भरा हुआ मुंह, दूध भर गया है मुंह में। लेकिन जब बांसुरी की आवाज सुनते हैं तो वो भी स्तब्ध हो जाते हैं, जैसे कि उनकी मांएं हो जाती हैं, और वो भी अपना मुंह हिला नहीं सकते। जैसे गाय हिला नहीं सकते हैं मुंह और चारा वगैरह ऐसे आधा का आधा रह जाता है, उसी तरह से गाय के बछड़े भी उनके जो मुंह हैं वो दूध से भरे हुए हैं, लेकिन अभी मुंह को हिला नहीं पा रहे हैं। स्तनों पे मुंह है लेकिन दूध पी नहीं पा रहे हैं और स्तनों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे थे वैसे हैं बस, और दूध मुंह में ही है, मुंह दूध को निगल भी नहीं सक रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे से दूध थोड़ा अपने उनके मुख से गिर रहा है, जमीन पर गिर रहा है, और इस तरह से ये भी स्तब्ध खड़े हैं, जैसे कि एक चित्र कोई तस्वीर हो, और ऐसे लग रहा है कि अपने आंखों से वो कृष्ण को अंदर ले रही हैं। इसका मतलब है कि जब कृष्ण होते हैं तो सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ स्तब्ध हो जाता है। यह है कृष्ण के बांसुरी का जादू। तो सबसे बड़े जादूगर हैं कृष्ण। आत्मनि दृश्य, अपने आंखों से उन्होंने कृष्ण को देखा था, अब अंदर ही अंदर कृष्ण का चित्र, उनका फोटो उन्होंने अपने हृदय में रखा हुआ है, और ऐसे करके अश्रु कलाह, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने हृदय के अंदर वो श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं, दोनों गाय भी और वत्स भी। इसलिए उनका हृदय प्रेम से स्नेह से भर आता है, और इतना स्नेह हो जाता है उनको श्री कृष्ण के प्रति कि दोनों वत्स और गाय इनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसलिए यहां गोपियां कहती हैं अश्रु कलाह। कलाह मतलब भरे हुए, उनके आंखें आंसू से भर जाती हैं। और यहां गाय के बछड़े जो है और गाय भी, उनको केवल दो चीज मालूम है, कृष्ण और कृष्ण की बांसुरी। वैसे स्वाभाविक तौर से गायों का आकर्षण उनके बछड़ों के प्रति होता है और बछड़ों का ध्यान गाय के ऊपर, अपने मां के ऊपर होता है। गायों का ध्यान अपने चारे के ऊपर होता है, बछड़ों का ध्यान मां के दूध के ऊपर होता है। लेकिन जब कृष्ण की बांसुरी दोनों सुनते हैं तो अपने स्वाभाविक आकर्षणों को भूल जाते हैं। गाय अपना चारा भूल जाते हैं, गाय अपने बछड़ों की ओर भी नहीं देखते हैं, बछड़ों को दूध पिलाना है वो भी भूल जाते हैं, और बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, अपने मां की ओर भी देखना भूल जाते हैं। केवल कृष्ण उनके चित्त में समाये हुए हैं। ये है गाय और गाय के बछड़ों की अवस्था। तो गोपियां कृष्ण के, बलराम के और अन्य गोपगण और गाय गाय के बछड़े जो जा रहे हैं वन में उनके पीछे पीछे जाते हैं व्रज के नगर के कोने तक सीमा तक, फिर आगे नहीं जाते क्योंकि उनके सगे संबंधी उनको डांट सकते हैं। वैसे भी सगे संबंधी खुश नहीं है कि गोपियां यहां तक गई हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को देखने का जो देखने की जो इच्छा है वो इतनी तीव्र है कि वो सोचते हैं कि डांटने दो, लेकिन इतने तो कम से कम हम जाएंगे। तो व्रज के सीमा तक जाते हैं और जब तक कि वो अदृश्य न हो जाए उनको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं अपने घरों के छत पे, चंद्र शालिकाओं पे चढ़ते हैं, वहां से देखते रहते हैं जब तक कि वो दूर न चले जाए, और फिर धीरे धीरे से भारी हृदय से व्रज में लौट के चले आते हैं। उनके पैर हिल नहीं रहे हैं, पैर वापस जाना नहीं चाहते हैं, पैर तो चाहते हैं कि वो कृष्ण के पीछे चले जाए जैसे गाय चले गए हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके लिए संभव नहीं है। आखिर वो स्त्रियां हैं, उनके ससुर, उनके सास, उनके पति उनको डांटने वाले हैं। तो धीरे 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 से पैरों को घसीटते घसीटते वो वापस लौटने लगते हैं, और जैसे लौटते हैं वहां पर नंद महाराज के गौशाला के पास आते हैं जो नंद गांव में है, और जब गायों को देखते हैं तो तुरंत वो याद करते हैं और फिर ये श्लोक बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नंद महाराज के सभी गाय कृष्ण के साथ चले जाते हैं, बड़ी संख्या में गाय जाते हैं, लेकिन ऐसे कई गाय होते हैं जो नंद महाराज के गौशालाओं में भी रह जाते हैं। ऐसे कौन से गाय हो सकते हैं जो रह जाते हैं वापस, जिन्होंने नए नए अभी बच्चों को जन्म दिया है, जिनके बछड़े अभी तक बहुत छोटे हैं, जिनको कि वो साथ में नहीं ले जा सकते वन में, या जो अभी ज्यादा गर्भवती हैं, किसी भी समय जन्म दे सकती हैं बच्चे को, या तो ऐसे जिनके कई बछड़े हैं, ऐसे गाय वो यहीं पर पीछे रह जाते हैं। और तो थोड़े बहुत सारे गाय हैं यहां, तो जो गाय कृष्ण के संग में चले गए हैं वो तो कृष्ण को दिन भर देख सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं, उनको चाट सकते हैं, लेकिन ये जो गाय हैं, बछड़े हैं, वो क्या करें, वो कृष्ण का संग केवल उनके बांसुरी की ध्वनि से करते हैं, वही उनका संपर्क है कृष्ण से, बांसुरी की ध्वनि। इसलिए ये गाय जो गौशाला में रहे हुए हैं वो अति ध्यान से सुन रहे हैं कृष्ण की बांसुरी, और जो गाय कृष्ण के साथ चले गए हैं वो तो कितने भाग्यशाली हैं, लेकिन इन गायों का क्या। तो इन गायों को देखकर गोपियां ये श्लोक बोल रही हैं, और गोपियां इन गायों का भी सौभाग्य का वर्णन करती हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं कि कितने प्रेम से आतुरता से ये कृष्ण के बांसुरी के अमृत का पान कर रहे हैं। ऐसे जब ये गोपी कह रही है तो दूसरे गोपी के मन में प्रश्न आता है कि अरे सखी, तुम कह रही हो कि ये जो गाय है ऐसे स्तब्ध खड़े हैं यहां, आधा उनके मुंह में चारा है आधा गिर गया है, जैसे चित्र समान खड़े हैं, तो तुम्हें कैसे मालूम कि वो कृष्ण के प्रेम में ऐसे खड़े हैं। हो सकता है कि अपने बछड़ों के प्रेम में ऐसे खड़े हों। तो दूसरी सखी जवाब देती है कि नहीं, वो अपने बछड़ों के प्रेम में ऐसे खड़े नहीं है, देखो बछड़ों की भी वही हालत है, बछड़े भी इसी तरह से स्तब्ध हैं, वो भी अपने दूध को नहीं ना थूक पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, अपने मुंह में ही रख रहे हैं और नीचे गिर रहा है। और देखो तो सही, गाय के तनों से दूध तो गिरे जा रहा है और पृथ्वी माता बड़े आतुरता से इसका पान कर रही है। इसलिए हम जान सकते हैं कि केवल कृष्ण के प्रेम से ये गाय जो है इस तरह से स्तब्ध हो गई है, और यहां तक कि ये जो गाय और बछड़े हैं इन्होंने स्वाभाविक अपना जो आकर्षण एक दूसरे के प्रति है उसको त्याग दिया है। इससे हम जान सकते हैं कि केवल कृष्ण के प्रेम की वजह से वो ऐसा करते हैं। इस तरह से गायों के स्तनों से स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी मात्रा में दूध बहता है। इस तरह का दूध बहना ये वात्सल्य रस का एक लक्षण है। वात्सल्य मतलब जब भक्त भगवान को अपना बच्चा समझता है, तो जैसे जो वरिष्ठ गोपियां हैं वृंदावन की और विशेष करके यशोदा माता, वो श्री कृष्ण को अपना बच्चा समझती हैं। हालांकि वो भगवान है लेकिन ये नहीं जानते कि ये भगवान है। और माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो यशोदा माता स्तनपान कराती थी पहले श्री कृष्ण को, जबकि कृष्ण बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उनकी वात्सल्य की भावना इतनी तीव्र है कि जब कृष्ण भगवान कुमार अवस्था से पार होकर पौगंड में भी आए, फिर भी माता यशोदा के स्तनों से दूध निकलता था भगवान कृष्ण के प्रेम में। जब श्री कृष्ण सुबह को चले जाते थे गायों को चराने के लिए, उस समय जब श्री कृष्ण लौट कर आते थे सायंकाल के समय, गोधूली से कलेप लगा हुआ उनके शरीर पे, उस समय भी जब श्री कृष्ण लौटने में थोड़ी देर हो जाती थी उनको, उस समय भी, यहां तक कि माता यशोदा के स्तनों से दूध निकालना ये कोई कृष्ण के आयु के ऊपर निर्भर नहीं था। जब बहुत साल बाद, जबकि कृष्ण द्वारका चले गए थे और द्वारका से कुरुक्षेत्र आए हुए थे सूर्य ग्रहण के समय, और वृंदावन के निवासी भी वहां आए थे और उनके बीच में यशोदा मैया भी थीं, उस समय श्री कृष्ण काफी बड़े हो गए थे उम्र में, 100 साल की उम्र हो गई थी उनकी प्राय, लेकिन उस समय भी यशोदा मैया वहां आई। और जब वहां ऋषि मुनिगण श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे थे भगवान कहके और गुणगान कर रहे थे, स्तोत्रों से स्तुतियों से प्रशंसा कर रहे थे, और जब उस सभा में माता यशोदा आई, उन्होंने कृष्ण को देखा, तब भी उनके स्तनों से दूध निकला। इसका मतलब है कि यशोदा माता का वात्सल्य प्रेम कितना ऊंचा है, कितना तीव्र है। तो जब गोपियां गायों को ऐसे दूध देते हुए देखती हैं, तो वो कहती हैं कि देखो हमें याद आता है माता यशोदा का। और फिर अलग अलग घटनाएं इनका वर्णन करती हैं कि जब माता यशोदा दूध देती हैं और वो कहते हैं कि ऐसा वात्सल्य प्रेम रामलीला में भी नहीं दिखाई पड़ता, माता कौशल्या का भी वात्सल्य प्रेम इतना नहीं है जितना कि इन गायों का है। और इनका जो इतिहास है कि ये जब ये गाय जो कि कृष्ण के साथ गई हुई हैं, वो पहले बछड़े थे जब कृष्ण छोटे थे उम्र में, और आप तो जानते हैं कि गोप बनने के पहले कृष्ण वत्स पर थे, मतलब वत्सों को पाला करते थे। जब नंद महाराज ने देखा कि कृष्ण गाय चराने ले जाना चाहता है लेकिन अभी तो बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है कृष्ण, तुम अभी गाय के बछड़ों को ले जाओ, गाय तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े हो जाएंगे, जब तुम खुद बड़े हो जाओगे तब बड़े गायों को ले जाना चराने के लिए। तो ये जो उस समय कृष्ण भगवान की कुमार अवस्था में जो छोटे छोटे बछड़े थे, जैसे कृष्ण की उम्र बढ़ती गई बछड़ों की उम्र भी बढ़ती गई, तो जैसे कृष्ण पौगंड में प्रवेश किए और आगे चलते गए उम्र में, वैसे ये बछड़े अब गाय हो गए थे। तो इतने सालों से इन गायों ने कृष्ण का संग किया था, दिन भर कृष्ण के साथ रहते थे बचपन से ही, तो स्वाभाविक है कि कृष्ण के प्रति तीव्र आकर्षण उनके हृदय में हुआ होगा। कृष्ण उनको नहलाते थे, उनका दोहन करते थे, उनसे प्रेम भरी बातें कहते थे, उनके पीठ पे खुजली करते थे, गल कंबल में खुजली करते थे, आलिंगन करते थे। इस तरह से श्री कृष्ण का इतने समय तक संग प्राप्त करके इन गायों के मन में बहुत स्नेह प्राप्त हो गया था, और यहां तक कि वो दूसरे बड़े जो गोपगण थे उनके साथ जाने के लिए वो तैयार नहीं होते थे, केवल कृष्ण के साथ ही जाते थे या तो अपने गोष्ठ में रह जाते थे अगर वो गर्भवती हो गई तो। इस तरह से ये गाय जो है बड़े प्रेम से यहां पर कृष्ण का स्मरण करती। और ये जो जब पहले वो वत्स थे तो उस समय उनको कृष्ण के प्रति कोई खास कोई विशेष रस में प्रेम नहीं था। ये रस तब विकसित होता है जब उम्र बढ़ जाती है, जब बुद्धि समझ थोड़ी आ जाती है। जैसे कि जब गोपियां हैं, जब गोपियां बहुत छोटी बच्ची थीं, तो उनके मन में कोई माधुरी प्रेम नहीं था क्योंकि एकदम छोटी थी, लेकिन जैसे उनकी उम्र बढ़ गई, उम्र बढ़ने के बाद फिर ये वात्सल्य रस जो है ये धीरे धीरे से माधुरी रस उनके हृदय में जागृत हो गया। उसी तरह से गाय के बछड़ों का, गाय के बछड़ों के मन में पहले ऐसा कोई विशेष रस नहीं था, लेकिन जैसे बछड़े धीरे धीरे बड़े हो गए, गाय हो गए, तो फिर ये वात्सल्य रस जो है वो उभर आया, प्रकट हो गया। ये रस प्रकट होने के पहले इसको स्वच्छ रति कहते हैं, क्योंकि कोई दूसरा रस नहीं होता। लेकिन ये छोटे छोटे गाय के बछड़े जो अभी गाय हो गए, उनके भी बछड़े हो गए, और इन गायों के बछड़े भी अभी इनके मन में कृष्ण के प्रति कोई विशेष रस नहीं है, फिर भी वो स्तब्ध हो गए। तो ये है कृष्ण भगवान के बांसुरी का जादू। तो इस तरह से वात्सल्य रस में ये जो गाय है कृष्ण भगवान से प्रेम करती है। गाय तो हमारी मां है और कृष्ण ने भी इनको मां के रूप में स्वीकार किया और भगवान ने इनकी इच्छा भी पूर्ण कर दी। ये गाय भी भगवान के भक्त है और भक्त वत्सल है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए भक्तों की इच्छा हमेशा पूर्ण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये गाय के दूध तो पीते थे, लेकिन ये देखिए कि गाय कितने थे, लाखों की संख्या में, और कृष्ण भगवान एक छोटे बच्चे की लीला कर रहे थे, वो कितना दूध पिएंगे, एक बच्चा कितना दूध पी सकता है। तो सारे गायों के मन में था कि हम खुद कृष्ण को दूध पिलाना चाहते हैं। वैसे कृष्ण भगवान जब छोटे बच्चे थे कुमार अवस्था में, कभी कभी जाकर वो सीधे गायों के स्तनों से भी दूध पिया करते थे, जैसे बछड़े पिया करते थे कभी कभी। लेकिन फिर भी कितना पिएंगे, कितने गाय हैं, एक छोटा बच्चा जाकर कितने स्तनों से दूध पिएगा गायों के। लेकिन कृष्ण अंतर्यामी हैं, वो जानते थे कि सारे गायों के मन में वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस में मां बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, तो ये इच्छा उनकी अधूरी रह गई थी। तो कृष्ण भगवान ने सोचा इनकी इच्छा को पूर्ण करना है। दूसरी ओर एक और महान व्यक्ति अपना इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे भगवान का गौरव, वो देखना चाहते थे कि किस तरह से ये बालक वास्तव में कृष्ण ये भगवान है या नहीं। कौन थे वो? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म विमोहन लीला के समय, जैसे आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया और वो सारे ग्वाल बाल और गाय के बछड़े बन गए। जब गाय के बछड़े बने तो गाय के बछड़े वापस गोष्ठ में जाते थे शाम को, और जैसे ही शाम को जाते तो क्या करते, सीधे अपने अपने माताओं के पास जाते, क्योंकि सायंकाल के समय दूध पीने का समय हो जाता था, वहां जाकर अपने अपने माताओं से दूध पीते थे। तो कौन उनका दूध पी रहा था, उन गायों का? कृष्ण पी रहे थे। इसका मतलब है कि कृष्ण ने इन सारे गायों की इच्छा पूर्ण की। देखिए एक लीला से भगवान कितने सारे कार्यों को संपन्न कर देते हैं। ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी की, सबकी, सारे भक्तों की इच्छा पूरी कर दी, और केवल इतना नहीं, लेकिन उनके साथ में जो ग्वालबाल थे, अब वो भी कृष्ण, तो उन ग्वालबालों के जो माताएं थीं, उन्होंने भी कृष्ण भगवान के प्रति वात्सल्य भावना रखी थी। वो भी सोच रहे थे कि हम कृष्ण को कब दूध पिला सकेंगे। वृंदावन की ये अद्भुत बात है कि यहां सारे दुनिया की जो प्रथाएं हैं, जो स्वाभाविक आकर्षण हैं, वो उलट पुलट हो जाती हैं। जैसे हमने देखा कि गाय और वत्सों के बीच में आकर्षण टूट गया जब कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी, तो उसी तरह से जो ग्वाल बालों की माताएं थी, जो वरिष्ठ गोपियां थी, वो कृष्ण को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करती थी। ये बड़ी अद्भुत बात है। वैसे मां के लिए अपना बच्चा ही सबसे प्रेम का पात्र होता है। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि मां का प्रेम कैसे होता है, कि बच्चा बड़ा अंधा भी हो, काना भी हो, लेकिन मां उसको पद्मलोचन कहेगी। पद्मलोचन जिसे आंखें कमल के जैसे हैं, तो मां की दृष्टि में बच्चा हमेशा प्रेम का पात्र रहता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी और इन गोपियों के बच्चों बच्चे इतने अच्छे सुंदर होने के बावजूद वो श्री कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते थे, अपने बच्चों के से ज्यादा। और वो चाहते थे कि कभी हम भी कृष्ण के प्रति एक मां का काम करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा भी पूर्ण कर दी, क्योंकि जो ग्वाल बाल हो गए थे उस एक साल के लिए, उन्होंने भी अपने माताओं का स्तनपान किया। तो पूरे एक साल के लिए इन गायों को और गोपियों की इच्छा भगवान श्री कृष्ण ने पूरी कर दी। इस तरह से ये गाय जो है उनका वात्सल्य रस काफी विस्तारित हो गया था, और माता यशोदा इन गायों के समान तो हैं, लेकिन माता यशोदा का स्थान बहुत ऊंचा है। गाय भी वात्सल्य रस में है, माता यशोदा भी है, वरिष्ठ गोपियां भी हैं, लेकिन इनमें काफी स्तर का अंतर है। गोपियों का वात्सल्य प्रेम उतना तीव्र नहीं है जितना कि यशोदा मैया का है। वात्सल्य रस की दृष्टि से देखा जाए तो यशोदा मैया का नंबर सबसे एक आता है। यशोदा मैया के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई उनको अग्नि में खड़ा करे, लेकिन उनके सामने श्री कृष्ण का सुंदर मुखारविंद हो, तो उनको अग्नि हिमालय के बर्फ के समान ठंडा लगेगा। अगर माता यशोदा को अमृत के समुद्र में खड़ा किया जाए लेकिन कृष्ण उनके सामने न हो, तो उनको ये अमृत का समुद्र जो है वो विष के समुद्र के समान लगेगा। तो माता यशोदा जैसे वात्सल्य रस किसी के पास नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से कि राधा रानी का माधुरी प्रेम किसी के पास नहीं हो सकता, अन्य गोपियों के पास भी नहीं, ठीक उसी तरह से माता यशोदा का स्थान इतना ऊंचा है। लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि गायों का वात्सल्य प्रेम कितना महान था। इसलिए जो अन्य गोपियां हैं जो वेणु गीत बोल रही हैं, वो गायों को देखकर, उनका वात्सल्य प्रेम उनके स्तनों से दूध बहते हुए देखकर उनको माता यशोदा का याद आता है। तो ये सारे गाय, अगर ये इनके हृदय में इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, वात्सल्य प्रेम है, और उनको ये भी संधि मिली थी कि स्वतः वो कृष्ण को दूध पिलाएं, तो ये है कौन वास्तव में? ये पिछले जन्म में कौन थे? चार जन्म में क्या ये सब नित्य सिद्ध हैं, साधना सिद्ध हैं, या क्या है? हम कल देख रहे थे, कल और परसों, कि गोपियों के कई वर्ग होते हैं। कौन से वर्ग होते हैं? साधना सिद्ध हैं और नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध कहां से आते हैं? भगवान के धाम से, गोलोक वृंदावन से आते हैं, और भगवान कृष्ण की लीला में शामिल होते हैं। और जो साधना सिद्ध, साधना करके फिर यहां कृष्ण लीला में भाग लेते हैं। तो ये सभी को दिखाई पड़ रहा है। फिर पहले थोड़े ऐसे थे जो नित्य सिद्ध थे पहले, और थोड़े साधना सिद्ध। जैसे गोपियां भी साधना सिद्ध थी थोड़े, वैसे गाय भी ऐसे साधना सिद्ध गाय। ये भी पहले यहां ब्रह्मांड में मनुष्य रूप में कोई तपस्या कर रहे थे, लेकिन वात्सल्य की भावना रखी थी उन्होंने, इसलिए उनको गाय का रूप मिल गया। इसके दो श्रेणियां हैं। एक तो है जो पहले महान ऋषि मुनि थे, जिन्होंने कि भगवान के आदेश अनुसार ऐसे गाय का रूप धारण करके भगवान की सेवा की, उनके लीला में भाग लिए, ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। और दूसरे श्रेणी के जो साधना सिद्ध गाय हैं, वो है मूर्तिमान श्रुति मंत्र। जैसे श्रुतिचारी गोपी भी थे, वैसे ये श्रुतिचारी गाय है। और उनके मन में भी एक लालसा थी श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य रस में प्रेम करने की, सेवा करने की, और खास करके गाय के रूप में। तो उनकी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी, उनको गाय का रूप दे दिया वृंदावन में। इसका मतलब है कि जिस भावना से, जिस रस से जीवात्मा भगवान की सेवा करना चाहे, भगवान उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा है। और क्यों एक जीव एक प्रकार की इच्छा करता है, दूसरा जीव दूसरे प्रकार की इच्छा करता है, इसके लिए कोई जवाब नहीं है। ये हर एक जीव का व्यक्तित्व है, और जो भी भावना किसी भी जीव के हृदय में है कृष्ण की बांसुरी को सुनकर उस भाव का ही विकास होता है, वृद्धि होती है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण की बांसुरी मनोज्ञ है, मतलब हर भक्त के मन की बात को जानता है और जो भी भावना भक्त के हृदय में है ये बांसुरी की ध्वनि वहां जाकर उसको विकसित करता है। तो इस तरह से ये गाय जब ये सुनते हैं कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि तो उनके हृदय में ये वात्सल्य रति जो है वो ज्यादा तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये साधना सिद्ध गाय, जैसे कि वो साधना सिद्ध गोपियां हैं, ये पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, इनको भी नित्य सिद्ध गायों का संग चाहिए। ये भी नित्य सिद्ध गायों के संग में उनको प्रशिक्षण मिलता है, जैसे नित्य सिद्ध गोपियां उनको देती हैं, ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वे। और फिर इस तरह से करके उनको अंततः जब वो पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, तो उनको भगवान श्री कृष्ण मूल आध्यात्मिक जगत के गोलोक वृंदावन में गाय के रूप में, सुरभि गाय के रूप में उनको प्रवेश देते हैं। गाय है, ये सब वंशज हैं एक गाय के जिसका नाम है सुरभि। तो उस सुरभि के पीछे इन सारे गायों का नाम है सुरभि। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ना ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सत्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम्, तो लक्षावृतेषु लाखों लाखों गाय हैं सुरभि गाय, और इनकी सेवा सेव्यमानम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो ऐसे गोविंद के चरणों में मैं नमन करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ये दोनों साधना सिद्ध गाय भी हैं और नित्य सिद्ध गाय भी हैं। शास्त्र में बताया जाता है कि ये गोलोक वृंदावन में ये नित्य सिद्ध गाय जो हैं, वो हमेशा गोष्ठों में वृंदावन के वहां खुले वनों में घूमते रहते हैं। इनका रंग बिल्कुल सफेद है, कर्पूर के चूर की तरह, और बड़े गंभीर रहते हैं, आदर्श रहता है उनका व्यवहार, चरित्र स्वभाव सब आदर्श रहता है। ये है सारे नित्य सिद्ध गाय, और उनके नीचे ये साधना सिद्ध गायों को प्रशिक्षण मिलता है। वैसे ये गायों के श्री कृष्ण भगवान के पास जो गाय हैं, उनके 108 दल हैं। जो गाय चराते हैं उनके 108 दल हैं, ये पिछले साल भी हम चर्चा कर चुके थे संक्षेप में। ये 108 अलग अलग दल हैं और हरेक दल में कई गायें हैं, और ये चार रंग के होते हैं प्रमुख, 25-25-25-25 ऐसे चार रंग, सफेद, लाल, काला और पीला, ये चार रंग के गाय होते हैं। 25-25 दल सफेद गाय, 25 झुंड काले गाय, 25 झुंड लाल गाय, 25 झुंड पीले गाय, तो कुल मिलाकर 100 झुंड हो गए। और बाकी 8 भी हैं वो इतर और भी अन्य, जैसे कि जिनका रंग है चंदन के तिलक के समान, और एक झुंड है जिनका मुख जो है वो मृगंग के बराबर है, और हैं जिनका मुख किसी सिंह के बराबर है तो उनको सिंह मुखी कहते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के ये गाय रहते हैं। थोड़े गाय ऐसे हैं जिनके कपाल पे तिलक की निशानी होती है, तो ये सारे गाय हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर कृष्ण के गायों के समूह, सफेद गाय, लाल गाय, काली गाय, पीले गाय और अन्य गाय, अन्य गायों में अलग अलग तरह के गाय हो सकते हैं। इनके कुल मिलाकर 8 झुंड होते हैं, तो 100 और 8, तो 108 पूर्ण समूह हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं, हरेक गाय का नाम है और कृष्ण भगवान को हरेक गाय का नाम मालूम है, भूलते नहीं है, हालांकि लाखों गाय हैं। और जब गायों को चराने ले जाते हैं और शाम को लौटने का समय हो जाता है तो कृष्ण भगवान एक जगह बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं और उनके पास एक माला है और उस माला, वो माला की मोतियां जो हैं, मणियां जो हैं, वो रत्नों से बनी हुई हैं। और जैसे जैसे वो किसी एक समूह के या एक दल के गाय के जो प्रमुख है उनको बुलाते हैं, उसका नाम लेते हैं। जैसे समझिए धवली, धवली सफेद गाय है, वो एक झुंड की प्रमुख गाय है, तो धवली बुलाते हैं वो। कृष्ण भगवान बड़े मीठे ढंग से बुलाते हैं, धवली का नाम पुकारते हैं। जैसे धवली सुनती है तो भाग कर चली आती है कृष्ण के पास, जहां भी वो चर रही हो, इधर उधर चर रहे होते हैं सारे गाय। लेकिन धवली जब सुनती है कि कृष्ण मेरा नाम पुकार रहे हैं तो भाग के चली आती है कृष्ण के पास। और केवल अकेली धवली नहीं आती, धवली के झुंड में जितने भी गाय हैं, जितने भी गाय हैं, चाहे 100 हो, 200, 1000, 500, 5000 जितने भी हो, वो सब भाग के उनके पीछे पीछे आती हैं। फिर कृष्ण भगवान उन सबको गिनते हैं, अपना अपना हर एक का नाम पुकार के हुए जैसे भी नाम लेते हैं तो वो घुमाते हैं मणि, मतलब कृष्ण के गायों के नाम का जप करते हैं वो। जैसे सफेद गायों के अलग अलग नाम होते हैं, हंसी, चंदनी, गंगा, मुक्ता, धवली, तो ऐसे सब बुलाते हैं। और कभी कभी अगर एक कोई गाय इधर उधर चली जाए तो भगवान क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ से बांसुरी बजाते हैं, बाएं हाथ में वो मणि चलाते हैं। बांसुरी की आवाज सुनकर अगर कोई गाय इधर उधर चली गई हो झुंड के बाहर, वो भी उस ध्वनि को सुनकर भाग के चली आती है। और फिर कृष्ण जो लाल गाय हैं उनको बुलाते हैं, उनके अलग अलग प्रमुख गाय होती हैं, अरुणी ही कहते हैं, तो अरुणी के साथ में जितने भी लाल गाय वो आते हैं। कुमकुमा, तो कुमकुमा के साथ में जो लाल गाय हैं वो चले आते हैं। और फिर काले काले रंग के गाय, वो कहते हैं हे यमुना, तो यमुना के साथ में जितने भी गाय हैं वो चले आते हैं। हे श्यामला, हे धूमला, तो सारे काले गायों के झुंड चले आते हैं। फिर जब वो कहते हैं हे पिंगला, हे पीता, हे हरितकी, तो सारे पीले रंग के जो गायों के झुंड है वो चले आते हैं। हे सिंहमुखी, तो सिंह के मुख की तरह जो गाय है उनका झुंड चले आता है। हे चित्रा, हे चित्र तिलका, हे दीर्घ तिलका, ये जिनके कपोल का जिनके कपाल में तिलक का की निशानी है वो चले आते हैं। इस तरह से अलग अलग झुंडों को भगवान श्री कृष्ण बुला लेते हैं। आखिर है व्यापारी ना, वैश्य है, तो अच्छी तरह से उनको गिनना पड़ता है ना। जैसे व्यापारी दिन के अंत में अपने पैसे अच्छी तरह से गिनता है ना, अच्छी तरह से हिसाब किताब रखता है, कितने पैसे आए, कितने गए, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ कमाया, तो कृष्ण भगवान भी वैश्य का काम कर रहे हैं ना। तो उनको देखना है कि जितने गायों उनको बछड़ों को ले गए वो उतने ही गाय आने चाहिए, कोई गाय इधर उधर गए तो नहीं। बड़े प्रेम से वो सबको देखते हैं कि कोई एक गाय इधर उधर भी न हो जाए। इस तरह से कृष्ण भगवान हर एक गाय को बुलाते हैं, उनके पीठ पे हाथ फेरते हैं और गाय बड़े खुश हो जाते हैं, आकर उनको चाटते हैं, उनको अपनी आंखों से वो अंदर हृदय में ले लेते हैं। और इस तरह से कृष्ण भगवान ऐसे गोचारण लीला भी कर लेते हैं। गोचारण लीला वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की एक नित्य लीला है। भगवान श्री कृष्ण की दो तरह की लीलाएं होती हैं, एक को कहते हैं नित्य लीला और दूसरे को कहते हैं नैमित्तिक लीला। नित्य लीला मतलब जो नित्य होता है, कभी रुकता नहीं है, जैसे कि वो मूल गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में होता है। हर दिन प्रातः काल को श्री कृष्ण गायों को लेकर चराने जाते हैं वन में और शाम को लौट के आते हैं। नित्य लीला हमेशा चलती है ये। और यहां भी गोलोक वृंदावन, यहां भी जब भौम वृंदावन में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो वहां पर भी ये लीला भगवान करते हैं। गोपियों के साथ में रासलीला करना, ये भी एक नित्य लीला है। माता यशोदा नंद महाराज को आनंद देना, ये भी एक नित्य लीला है। अपने ग्वालबाल मित्रों के संग में खेल क्रीड़ा करना, कुश्ती करना,
महर्षि मजाक करना ये भी एक नित्य लीला है, क्योंकि ये गोलोक वृंदावन में चलता है और यहां भौम गोलोक वृंदावन में भी चलता है। ये नित्य लीलाएं दोनों जगह चलती हैं। लेकिन ऐसी कई लीलाएं हैं जो कि आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में नहीं हो सकती हैं, जैसे कि असुरों का वध। वहां तो कोई असुर नहीं है, असुर तो केवल यहां पर है। इसलिए यहां जब असुरों का वध करते हैं तो इसको नैमित्तिक लीला कहते हैं। नैमित्तिक मतलब बीच बीच में जो होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। ये भगवान के धाम में वृंदावन में हमेशा नहीं होते, गोलोक में नहीं होते, यहां इस गोलोक में होते हैं। या तो फिर कृष्ण भगवान का वृंदावन छोड़ के जाना, ये एक नैमित्तिक लीला है। उस गोलोक वृंदावन में कृष्ण छोड़ के नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन के बाहर भगवान कृष्ण नहीं लेते हैं। तो ये गोचारण लीला ये एक नित्य लीला है भगवान की, और इसमें बड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि आखिर ये इनका काम ही है। उनका नाम ही है ऐसे गोपाल, उनके गांव का नाम भी है गोकुल गोलोक, उनका धाम है गोलोक वृंदावन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुबह से ही ये काम करते हैं। जब सुबह माता यशोदा उनको जगाती हैं, तो उठ के उनको स्नान कराते हैं माता यशोदा, फिर उनको आभूषित करते हैं, सुंदर कपड़े पहनाते हैं, आभूषण रत्न इत्यादि पहनाते हैं। उस समय कृष्ण भगवान के मित्र भी वहां साथ में आते हैं, वो जल्दी से तैयार होकर निकल पड़ते हैं कृष्ण के पास। उनको कोई धीरज नहीं होता बच्चों को कि चलो टाइम आएगा फिर हम गाय चराने जाएंगे, नहीं, वो सुबह सुबह ही कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। सोचते हैं कि और आधा घंटा लगेगा, प्रसाद लेना ये लेना वो बहुत टाइम है। सुबह उठ के स्नान करके तुरंत भाग के आते हैं कृष्ण के पास। और फिर जब माता यशोदा श्रृंगार कर रही होती हैं भगवान कृष्ण का, तो उस समय ये ग्वाल बाल भी मित्र करते हैं। अगर माता यशोदा कोई मोती का हार पहनाना चाहती है उनको, तो ये भी हार ला के देते हैं, कोई और श्रृंगार करते हैं। और तो उस समय भगवान कृष्ण सज धज के तैयार हो जाते हैं। फिर कोई न कोई एक वरिष्ठ गोप आता है और बड़े मूछ वाला पगड़ी रंग बिरंगी कपड़े पहनकर हट्टा खट्टा व्यक्ति आता है और कहता है कि हे गोपाल, गायों का रक्षण करने वाले गोविंद, देखो हमारे गोष्ठ में बड़ी समस्या हो गई है। क्या समस्या है? कि हमारे गौशाला में निपुण और दक्ष गोपालकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कितने अनुभवी गोपालक होने के बावजूद वो गाय का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, गाय दूध ही नहीं दे रही है, वो तो केवल तुमको देखना चाहती है पहले, तो कृपया जल्दी से चले आओ, तुम्हारे वहां उपस्थित होने से गाय अवश्य दूध देंगी। तो कृष्ण गायों का नाम सुनते हैं, तुरंत स्फुरित हो जाते हैं और उठकर जल्दी से बड़े उत्साह से चल पड़ते हैं, और उनके ग्वाल बाल मित्र भी उनके पीछे पीछे आते हैं। फिर कृष्ण भगवान जैसे गौशाला के पास में आते हैं, तो वैसे वैसे गायों को पता चलता है। वो बोल रहे थे, वो जो गोपालक आए थे, कि देखो गाय बहुत आवाज कर रही हैं, वो कृष्ण तुम्हें देखना चाहती हैं। कृष्ण का दर्शन किए बगैर गाय जो है बहुत ही विचलित रहती हैं, अस्थायी रहते, वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, बहुत आवाज करते हैं। तो फिर कृष्ण अपने मित्रों के साथ चलते हैं गोष्ठ के पास। जैसे आते हैं तो वैसे ही गायों को पता चलता है कि कृष्ण आ रहे हैं, आवाज करना शुरू कर देते हैं एक के बाद, उनको पता चलता है आ रहे हैं कृष्ण, तब उत्तेजित हो जाते हैं आनंद में, फिर जोर जोर से ऐसे आवाज करते हैं, सिर हिलाने लगते हैं, अपने पाए ऊपर नीचे ऊपर नीचे थप 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 आवाज करने लगते हैं जमीन के ऊपर, बिल्कुल पूरी तरह से चल विचल वातावरण हो जाता है सारे गौशाला में। जैसे कि हमारे गौशाला में हम देखते हैं जब चारा देने का समय आ जाता है, खास करके बरसात के समय उनको बाहर नहीं लिया जा सकता, अंदर ही गौशाला में ही बांधा जाता है, तो जब चारे का समय हो जाता है तो इसी तरह से वो आवाज करते हैं और चल भी तो उठते हैं, बैठते हैं, इधर उधर एक जगह खड़े नहीं रहते, तो पता चलता है कि अभी उनको समय हो गया, उनको देना है। तब देखते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं, तब सब उत्तेजित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और कृष्ण की ओर देखते हैं, कब आएंगे, आएंगे आएंगे, कृष्ण आए हमारे गौशाला के अंदर। और कृष्ण गौशाला में प्रवेश करते हैं और बड़े स्नेह भरे आंखों से उनके ऊपर नजर डालते हैं, तो सारे गाय बड़े संतुष्ट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कृष्ण केवल मुझे देख रहे हैं और केवल कृष्ण मेरे पास में खड़े हैं। हर एक गाय को ऐसे लगता है। ये कृष्ण की योग माया शक्ति है। इस तरह की लीला भगवान श्री कृष्ण कई बार करते हैं, जैसे ग्वाल बालों के साथ में जब वो वन में जाकर पिकनिक करते हैं, प्रसाद लेते, भोजन लेते हैं जंगल में बैठकर, तो वहां हर एक ग्वाल बाल को लगता है कि कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं, जबकि कृष्ण केंद्र में बैठे हैं और सारे ग्वाल बाल गोलाकार बनाकर उनके इर्द गिर्द बैठे हैं और कई ऐसे गोल हैं। तो अब देखिए, अब कृष्ण जब केंद्र में बैठे हैं और सारे ग्वाल बाल गोलाकार बना के बैठे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उनके पीछे भी कोई बैठा होगा, उनके बाएं दाएं भी कोई बैठा होगा, केवल सामने तो सब ग्वाल बाल बैठे नहीं है। लेकिन फिर भी हर एक ग्वाल बाल को लगता है कि श्री कृष्ण मेरी ओर देख रहा है। ठीक उसी तरह से जब वो रासलीला करते थे गोपियों के साथ, तो हर एक गोपी को लगा कि श्री कृष्ण मेरी ओर ही देख रहे हैं और मेरे साथ में ही है नृत्य करने के लिए। और यहां पर गायों को भी वात्सल्य रस में ऐसे लग रहा है कि श्री कृष्ण प्रवेश कर गए हैं और केवल मेरी ओर देख रहे हैं, केवल मेरे तरफ आए हैं। आप में से कोई यहां हमारे गौशाला में गए हैं, गोकुलानंद गौशाला में? कितने गए हैं आप में से? अंदर प्रवेश करते समय जब अंदर गए तो आपने क्या देखा गायों के बारे में? गाय क्या करती है? हाँ, वो सबसे पहले अपना जो शरीर है आपके पास लाते हैं, सर झुकाकर पास में आते हैं, खुजली करो मुझे, मालिश करो मेरा पीठ, हाथ फिराओ मेरे पीठ के ऊपर। और अगर दूसरे गाय के पास जाकर आपने खुजली करना शुरू किया, मालिश करना शुरू किया, तो क्या करते हैं? धक्का मारते हैं, दूसरे को हटा देना चाहते हैं और आपके पास आते हैं, क्योंकि यहां से बांधा हुआ है उनको, तो केवल पीठ, पिछला भाग उनका शरीर का वो फ्री होता है, तो पीठ ले आकर आपको धक्का मारेंगे और फिर आप दोनों गायों के बीच में अटक जाएंगे, तो आप निकल नहीं पाएंगे। और गाय वैसे शक्तिशाली है, उनका बड़ा शरीर है, आप धक्का मारेंगे इतना फिर निकलेंगे नहीं, फिर किसी न किसी तरह धक्का मार के आपको निकलना पड़ेगा। तो अपना शरीर आपके पास लाएंगे कि मुझे भी करो, मुझे भी करो, मुझे भी खुजली करो, मुझे भी मालिश करो। हर एक गाय ऐसे करते हैं। अगली बार जब आप जाएंगे आप ये अनुभव कीजिए, एक गाय को खुजली कीजिए फिर बाकी गायों को देखिए। तो इसी तरह से जैसे कृष्ण प्रवेश करते थे तो हर एक गाय अपना शरीर कृष्ण के पास ले आते थे कि मेरे पीठ के ऊपर हाथ थमाओ, कुछ हाथ फिरा दो, या मेरे सामने मेरे लिए कोई अच्छे दो मीठे बातें बोलो। तो इस तरह से सारे गायें कृष्ण की ओर चले आते थे। और जब तक कि कृष्ण भगवान वहां आकर हर एक गाय के साथ ऐसे दो बातें न करें, उनके पीठ पे हाथ न फिराए, तब तक ये गाय दूध नहीं देती थी। ये रोज की घटना थी ये। और फिर कभी कभी श्री कृष्ण दोहन करने बैठ जाते थे, कभी कभी नहीं बैठते, और फिर गाय अपने बछड़ों को भी दूध देना शुरू करती थी। जब तक वो कृष्ण का दर्शन नहीं करते तब तक अपने बछड़ों को भी वो दूध नहीं देती थी, दूध पकड़ के रख देती थी अपने स्तनों में, और जो अनुभवी गोपालक भी दोहन नहीं कर पाते थे। तो इतना महान है इनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए। गायों के व्यवहार में हमने थोड़ी समानता देखी वृंदावन के गायों में और हमारे गौशाला के गायों में, लेकिन अंतर भी बहुत है कि वृंदावन के गौशाला उसका ऐश्वर्य के बारे में सुनेंगे तो हमारा गौशाला जो है थोड़ा सीधा साधारण पड़ जाता है। वृंदावन की गौशालाओं के जो ऐश्वर्य है वो स्वर्ग के ऐश्वर्य से भी ज्यादा है, बढ़कर है। वहां हर कुछ खंभे जो है सोने के बने हुए हैं और जितने भी और छत वगैरह में है नाना प्रकार के अनमोल जो रत्न है और मोतियां हैं, मणियां हैं, ये इन सबसे सुशोभित सारे गौशाला है। ऐसा कोई गौशाला देखा आपने? ये सोना है, चांदी, रत्न, ऐसे सब चीजों से बने हुए। लेकिन गायों के लिए सच्चा धन क्या है, ऐश्वर्य क्या है? कृष्ण का दर्शन। अगर वो कृष्ण का दर्शन नहीं करती हैं तो उनको ये रत्नों से, हीरे मोतियों से, सोने से कोई मतलब नहीं, उनको लगता है कि खाली खाली है। अगर कृष्ण हो और कृष्ण का प्रेम हो तो कहां भी रहें वो खुश रहती हैं। और ये जीवात्मा के लिए भी है। अगर कोई व्यक्ति, इसके पास बहुत सारा धन हो, बहुत पैसा हो, समाज में बड़ा नाम हो, बहुत सुंदर हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उसके हृदय जीवन में कोई प्रेम नहीं है, भगवत प्रेम की बात छोड़िए, संसार का भी प्रेम उसके पास अगर नहीं है तो उसको अपना जीवन खाली खाली लगता है। बराबर है ना? उसका घर उसको खाली लगता है कि क्या फायदा, ये सब इतना बड़ा घर है, इतना पैसा है, लेकिन जीवन में कोई प्रेम नहीं है, दो मीठे शब्द कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसको खाली खाली लगता है। तो यहां पर हर जीव को प्रेम का अभाव लगता है, केवल पशु को नहीं, हर एक आत्मा को, क्योंकि हमारा स्वभाव है कृष्ण से प्रेम करना, ये हमारा स्वरूप है। और जब हम कृष्ण से दूर हो जाते हैं तो फिर समस्या हो जाती है, जीवन खाली खाली लगता है। दुनिया भर का ऐश्वर्य भी जीवन में आए, हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम गरीबी में भी हो लेकिन कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में हो तो हमारे जीवन में हमें संतुष्टि मिलती है। तो गायों के साथ भी ऐसा है। हालांकि वहां के गौशालाएं जो हैं वो इतने ऐश्वर्यशाली थे, लेकिन गाय तब संतुष्ट होते थे जब वो कृष्ण का दर्शन करते थे। तो वहां पर गौशालाओं के आजू बाजू में और सारे व्रज में कैसे दृश्य दिखने में आता था, क्या सब चलता था वहां पर, तो आइए आचार्यों के हृदयों की कमेंट्री से, उनके वर्णन से हम देखते हैं कि उस समय व्रज में क्या क्या चलता था, क्या होता था। जैसे यहां अगर बेलगाम का कोई वर्णन करना चाहता है, वो रेलगाड़ी की सुंदर मधुर ध्वनि की आवाज का वर्णन करेगा, और यहाँ के सुंदर मोटर गाड़ियों की पंप पंप की आवाज करेगा कि आप बाहर जाएंगे तो यहाँ ऐसे लोग यहाँ दारू के अड्डे में जाते हैं, यहाँ लोग वहाँ होटल में खाते हैं, वहाँ सिनेमा देखने जाते हैं। तो ऐसा बेलगाम का वर्णन करना हो कोई कवि अगर करे तो ऐसा सब उसको कहना पड़ेगा। लेकिन वृंदावन में क्या चलता था, बाहर सब जगह गोबर की धूली फैली हुई, सब जगह शुभ वातावरण, हरा भरा सब कुछ दूरी में दिखाई पड़ता था, हरियाली सब जगह, सुंदर फूल खिले हुए हैं, मधुर रम्य वातावरण, सुंदर पवन भी बह रहा है। और एक जगह गोबर पड़ा है, कितने पहाड़ की तरह गोबर के पहाड़ों के पहाड़ पड़े हैं सब जगह। स्वाभाविक है जब 9 लाख गाय केवल नंद महाराज के हैं तो गोबर तो बहुत होना होगा। हमारे गौशाला में 25 गाय हैं फिर भी गोबर इतना हो जाता है, पहाड़ है वहां पे, देखा होगा। तो वृंदावन में तो गोबर के बड़े बड़े पहाड़ हैं, और ये वृंदावन का धन है गोबर। गोमय लक्ष्मी वसति ही, शास्त्र में बताया जाता है कि गोमय या गोबर में लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। तो जहां गोबर है वहां पे दारिद्रता कैसे हो सकती है। जहां गाय है, जहां गायों को प्रेम से देखा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है बड़े प्रेम से, स्नेह से, वहां कभी भी पैसे का अभाव नहीं हो सकता, हर प्रकार का धन आ जाएगा, क्योंकि गाय के मय में, गोबर में भी लक्ष्मी देवी निवास करती है। और जगह जगह जिस तरह से गोबर के पहाड़ पड़े हुए हैं, वैसे गोबर के कंडों के पहाड़ भी पड़े हुए हैं। गोबर के कंडे जानते हैं ना, गोबर के केक्स, ऐसे जैसे चपाती होते हैं वैसे उनके भी पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, और वो भी हिमालय के पर्वतों के समान बड़े बड़े पहाड़ हैं गोबर के कंडों के, सब जगह पड़े हुए हैं, जगह जगह आप व्रज में देख सकेंगे। और यहाँ इधर उधर बैल और सांड घूम रहे हैं, व्रज के बैल। ज्यादातर हम व्रज के बैल और सांडों का वर्णन नहीं पढ़ते हैं, केवल गायों का वर्णन पढ़ते हैं, लेकिन आचार्य बैलों के बारे में, सांडों के बारे में भी वर्णन करते हैं। और वो ऐसे घूमते हैं सर उठाकर कि जैसे मानो वो कोई बड़े ऋषि हैं, गंभीर। लेकिन कभी कभी आपस में किसी गाय के लिए दो बैलों में, दो सांडों में झगड़े होते हैं। लेकिन कभी भी जो भी कुछ कर रहे हो, ये बैल और सांड 24 घंटे भगवान कृष्ण का स्मरण ही करते करते घूमते हैं। बैलों को ऐसे ही छोड़ा जाता है, सांडों को, और इस तरह से फिर गायों की संख्या बढ़ती थी। और जगह जगह देखा जाता था कि जो गोपियां अपने अपने गौशालों के अपने घर के गौशाला के में से जो गोबर निकलता था, कोई गोबर साफ कर रही हैं गोपियां, और फिर गोबर एकत्र करके उनको एक जगह बैठ के वो कंडे बना रहे हैं, गोबर के कंडे, और सब एक गोलाकार में बैठकर ये कंडे बना रहे हैं और साथ साथ गीत गा रहे हैं कृष्ण लीला का। कृष्ण ने ऐसे लीला की, कृष्ण वैसे किया, कृष्ण कथा करते करते वो गोबर के कंडे भी बना रहे हैं। तो कल्पना कीजिए आपके मन में कि व्रज का सुंदर दृश्य केवल यहां पे नहीं, वहां पे भी होता है गोलोक वृंदावन में। और इस तरह से ब्रजवासीगण इधर उधर अपने अपने काम पे जा रहे हैं, सबके पास कपड़े बड़े खूबसूरत होते हैं, रेशम के कपड़े। अब आप पूछेंगे कि इतना सोना चांदी रत्न ये रेशम ये सब आया कहां से? इनके पास तो केवल गाय है, लेकिन गाय यही तो सही धन है। गवयो धनवान गाव्य धनवान ऐसा कहा जाता है कि जिनके पास गाय है और जिनके पास धान्य है मतलब अनाज है वही वास्तव में धनवान है, ये सच्चा धन है। तो नंद बाबा और वृंदावन के जो अन्य गोपगण थे उनको बहुत सारा दूध मिलता था, इतना दूध कि इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। और हर एक गाय सुरभि गाय है, हमें याद रखना है। तो एक एक सुरभि गाय कितनी दूध देती है और इतना सारा दूध, तो ये इस दूध जितना उनको चाहिए था उतना अपने पास रख देते और बाकी वो उसको बदली कर देते, बदली करके उसके बदले में वो दूसरा सामान लेते जो उनको चाहिए था। और केवल दूध और घी के ऐश्वर्य के ऊपर उनके पास इतने सारे हीरे मोती रत्न सब कुछ आ गया था। और इसलिए वो अच्छे अच्छे रेशम के कपड़े, अच्छे अच्छे रंग बिरंगी पगड़ियां, हीरे मोती पहनकर इधर उधर घूमते थे। सभी लोग कृष्ण कथा करते करते, वृंदावन में एक ही कथा होती थी कृष्ण कथा, कोई प्रगल्प नहीं। और आपस में जब भी कोई दो ब्रजवासी मिलते थे कृष्ण के बारे में बोलते थे, या नंद महाराज यशोदा मैया का गुणगान करते थे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कितने तपस्या की होगी, कितने पुण्य किए होंगे कि उनको श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। और फिर सुबह को गोधूली उड़ाते उड़ाते ये गाय सब चली जाती हैं कृष्ण के साथ में वन में चरने के लिए। और ब्रह्मा जी इंद्र शिव जी इत्यादि वो भी इस गोधूली को चाहते हैं अपने शरीर पर लगाने के लिए, क्योंकि इतना पवित्र है ये। और गाय जब चलते हैं कृष्ण के साथ वन में जाते जाते तो सर ऊपर करके हसमुख चेहरे से हंसते हंसते जाते हैं और अपना सर हिलाकर बड़े आनंद से झूमते जाते हैं, आखिर कृष्ण के साथ जा रहे हैं जो, इसलिए उनका मन तो बड़ा प्रसन्न हो गया है। और जो पीछे गाय रह गई है वो थोड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि केवल वो कृष्ण के बांसुरी से उनका संग कर सकेंगे, लेकिन ये गाय जो कृष्ण के साथ जन्म जंगल में जाएंगी वो तो खुश होकर जाते हैं, प्रसन्न चित्त से जाते हैं। और कृष्ण भगवान के आगे पीछे बाएं दाएं सब जगह गाय 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 गाय, और ये सारे गाय कृष्ण भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर रही हैं। माता यशोदा को कभी डर लगता है कि अरे सब जगह गाय घेर के जा रहे हैं श्री कृष्ण को, तो कहीं उनके जो पैर लग गए कृष्ण को तब क्या होगा? तो ये जो भय है माता यशोदा के मन में ये गाय जानती है, आखिर गाय भी वात्सल्य भाव में ही प्रेम करती है कृष्ण से, वो भी माँ के समान है। तो गाय जब चलती हैं तो बहुत ध्यान से चलती हैं कि कहीं कृष्ण के चरण कमल के ऊपर हमारे पैर न लग जाए, इसलिए माता यशोदा को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गाय बोल नहीं सकती है, लेकिन अपने मन में वो इसका ख्याल रखती है, इसलिए कृष्ण भगवान के चरण कमलों को कोई खतरा नहीं है। यहां तक कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों को भी वो संभाल कर चलती है, जैसे हम परसों चर्चा कर रहे हैं, समझौता हो गया था ना सारे पशुओं में गोपगणों में कि कृष्ण के चरण चिन्ह यह वृंदावन का सबसे बड़ा धन है, ऐश्वर्य है, इसको संभाल कर रखना है, इसलिए गाय इसके ऊपर भी अपने पैर रख के नहीं जाते हैं। और गाय उनके जो आभूषण है वो कैसे हैं? उनके पूंछ के ऊपर भी मोर पंख हैं, नाना प्रकार के मोतियां हैं। कभी ऐसे यहां ऐसे गायों को देखा है आपने? उनके दो सींगों के बीच में सोने के मुकुट हैं और उनके गले में नवरत्नों के कहार है और कई ऐसे जो बैल स्थान होते हैं उनके सुंदर फूलों की माला भी है, और इस तरह से सारे गाय और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। इस तरह से जाते 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 यमुना के तट पर पहुंचते हैं, वहां पर लीला करते हैं, गाय गोवर्धन तक पहुंचते हैं, वहां पर बहुत ही स्वादिष्ट घास खाते हैं, वहां के सुंदर झरनों से पानी पीते हैं। उसके बाद एक वन से दूसरे वन, ताल वन, भंडीरा वन, कुमुद वन, भद्र वन, ये सारे वनों में घूमते 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 फिर जब गाय चरते हैं तो ग्वाल बाल कृष्ण बलराम के साथ खेलते हैं, अपना भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, कभी विश्राम भी करते हैं। और जब ग्वाल बाल विश्राम करते हैं तो गाय उनकी सुरक्षा करते हैं, गोपालकों की का पालन गाय करती है उस समय। और फिर आखिर में धीरे से नंदगांव लौटने का समय हो जाता है। तो सायंकाल में कृष्ण भगवान सारे गायों को बुलाते हैं, जैसे हमने पहले वर्णन किया, उनके नाम बुलाकर बांसुरी बजाकर सारे गाय वापस आ जाते हैं, और धीरे 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 से गायों से और ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण चले आते हैं नंदगांव। यहाँ के सारे नंदगांव के निवासी अपने अपने चंद्र शालिकाओं में छतों पर चढ़े हुए हैं, देख रहे हैं कि आ रहे हैं श्री कृष्ण, गोधूली से बिल्कुल ढके हुए, लेकिन ये गोधूली से उनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। इस तरह से श्री कृष्ण चले आते हैं वापस नंदगांव। ऐसे भगवान की गोचारण की लीलाएं हैं, और ये है गाय और श्री कृष्ण के बीच में प्रेम का संबंध। आज रविवार है, तो आज दोपहर के जो कार्यक्रम में भी इसी श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि समय है, और सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाएंगे आपको। दोपहर में तो अवश्य आइएगा, कौन सी सुंदर लीलाएं की भगवान श्री कृष्ण जो कि गाय से संबंधित हैं उनके बारे में अगर आप सुनना चाहेंगे तो आप दोपहर के समय आइएगा, यहाँ भगवान के गायों के साथ जो लीला है उनका वर्णन होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
Who is these 84 lakh species which are found in this material world? They are same existing in the spiritual world.
प्रश्न ये है कि यहाँ जो 84 लाख योनियां हैं, क्या वो भगवान के धाम में भी हैं? क्यों नहीं? ये आखिर एक प्रतिबिंब है ये जगत, तो यहाँ जो भी विविधता हमें दिखाई पड़ती है वो वहां भी होना चाहिए। वहां भी पक्षियां हैं जैसे तोते हैं, मयूर हैं, वहां भी पशु हैं जैसे हिरण हैं, गाय हैं, तो अन्य प्राणी पशु भी क्यों नहीं हो सकते? लेकिन ये सब अपने शुद्ध रूप में वहां रहते हैं, इसलिए वहां जो भी भगवान के कृष्ण की लीला के लिए आवश्यक हैं उतने योनियां रहते हैं। अगर भगवान कृष्ण की लीलाओं में अनुकूल है कोई योनि रहना तो उसको भगवान जगह दे देते हैं उनके लिए। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए अनुकूल है वो सारे योनियां वहां हैं। कोई जीव अगर चाहे कि मैं पेड़ बनना चाहता हूं, क्योंकि पेड़ बनकर मैं श्री कृष्ण को छाया दे सकता हूं, श्री कृष्ण आकर मेरा फल खा सकते हैं, मेरे छाया के नीचे दोपहर में विश्राम कर सकते हैं, तो वहां पेड़ है। कोई मोर बन सकते हैं सोचते हुए कि हम नाचेंगे हम कृष्ण भगवान के साथ, उनको हमारा पंख देंगे, कोई मोर बन सकते हैं। कोई गाय बन सकते हैं जो सोचते हैं हम कृष्ण को अपना दूध पिलाएंगे, कृष्ण भगवान को हम चाटेंगे, उनको आनंद देंगे। तो तोते भी हो सकते हैं, कोयल भी हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हम कृष्ण भगवान को हमारी सुंदर गीत सुनाएंगे, उनका मनोरंजन करेंगे। तो कोई कोयल हो सकता है, कोई पोपट, कोई तोता हो सकता है, ऐसे अलग अलग योनियां हो सकती हैं भगवान के धाम में। कहने का मतलब है जो भी कृष्ण के लीला के रस को बढ़ाने के लिए अनुकूल है वो सारी योनियां वहां पर हैं। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
जैसे कि आपने अभी भी बता रहे थे, जो भी जीव जिस भाव में भगवान को सेवा करना चाहते हैं वो उनको वो शरीर उधर मिल जाएगा, लेकिन हमारा सभी अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा रूप एक अभी है जो हम भूल चुके, हम अलग इच्छा करेंगे तो हमें अलग शरीर भी मिलेगा।
बात यह है कि हम अलग इच्छा नहीं करेंगे, हम उसी तरह से इच्छा करेंगे जो हमारी भावना है, और उस तरह से उसी मार्ग में हम आगे 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 चलते जाएंगे। और जब हमारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, हमारे भक्ति के सफलता परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे, तब उसी भाव में जाकर हम गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। और कोई प्रश्न? अच्छा, ये है कि पिछले कई दिनों के वर्णन से ये लगता है कि जिनका मनुष्य शरीर है वो ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि वो भी मधुरी रस में प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। वैसे हालांकि एक बाहरी दृष्टि से हम अलग अलग रसों का, माधुरी रस, वात्सल्य रस, सख्य इत्यादि, तुलनात्मक दृष्टि से हम जानते हैं कि माधुरी रस सबसे ऊंचा है, परंतु हर एक भक्त के लिए जो कि अलग अलग रस का स्वाद लेते हैं, उनके लिए ऐसे में उनको ये प्रतीत नहीं होता, ये अनुभव नहीं होता कि दूसरा रस मेरे रस से ज्यादा अच्छा है। उनको अपना ही रस सबसे अच्छा लगता है। अगर आप उनको कुछ भी देंगे कि हम आपको गोपी बनाएंगे, आप गोपी बोलेंगे नहीं, मैं गाय ही बनना चाहती हूँ, ये मेरे लिए सबसे अच्छा है, उसी में उनको संतुष्टि मिलती है। हालांकि भले वो जान भी लें कि गोपियां हम उनका प्रेम हमारे से ज्यादा तीव्र है, लेकिन उनका रस उस तरह से है, इसलिए उनको वही स्थिति पसंद है। जैसे हनुमान जी को प्रभु रामचंद्र जी का दास ही बनना है, हालांकि वो गोपियों की महानता को जानते हैं, परंतु उनको गोपी नहीं बनना, उनको तो दास ही रहना है प्रभु रामचंद्र जी का। उनकी भावना वो है, उनका स्वरूप, उनकी स्वरूप सिद्धि वही है। तो जिस स्वरूप सिद्धि में, जिस स्वरूप में जीवात्मा स्थित है, वो उसी में पूरी तरह से संतुष्ट है, इसलिए कोई भेद नहीं है इसमें। और जो जिनका स्वरूप गोपियों का है, उनको वो शरीर मिल जाता है, आध्यात्मिक शरीर, तो उस भाव में वो भगवान की सेवा वहां करते हैं। तो हरेक जीव को अपने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अपने भावना के अनुसार एक सेवा करने का मौका मिल जाता है, और वो उसी सेवा में पूरी तरह से संतुष्ट है, उनको कोई भी अभाव महसूस नहीं होता है, उसमें कोई कमी नहीं लगती है। यहां भक्त की भावना उनके भगवान के धाम में रहती है, क्या वही धामना भावना यहाँ पे भक्त की हो सकती है? जब भक्त पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा तब, उसके पहले नहीं। उसके पहले हमारी क्या भावना है? हम तो कृष्ण को जानते ही नहीं है, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है ही नहीं, तो भगवान के धाम की भावना कैसे हो सकती है? जब हमारे हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, जब वो भाव का विकास परिपूर्णता की मात्रा में विकसित हो जाएगा, तब जाकर हमारी भावना उन भक्तों की तरह रहेगी जो कि गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं।